मुनिवर श्री क्षमा सागर जी गुरु के चरणों में सत सत वंदन सत सत वंदन हम सब शिष्य आते हैं।
भवबीजाङ्कुरुजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी के आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
कभी लोगों ने अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर बहुत प्रकार से विचार किया है और हमने ये जाना है कि जिसका जीवन जितना निराकुल है जितना निश्चिंत है जितना निर्भय है वो जीवन अच्छा है। जिसके जीवन में जितनी कम इच्छाएं हैं जितनी कम आकांक्षाएं हैं उसका जीवन उतना अच्छा है। जो व्यक्ति जितना गुणवत्ता को ग्रहण करने में सक्षम है वो व्यक्ति उतना अच्छा है और जो व्यक्ति अच्छाई के मार्ग पर चल करके और अच्छाई का ही सम्मान करता है और कभी भी आसपास फैली हुई बुराइयों से आकृष्ट नहीं होता वो व्यक्ति ही अच्छा है, वैसा जीवन ही अच्छा है। तो हमने भी ये विचार किया है कि हम ऐसा ही जीवन बनाएंगे और ऐसा जीवन बनाने के लिए हमने ये भी विचार किया है कि हमारे दृष्टि में अगर एक बार ये बात आ जावे और संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता यदि हमें मालूम पड़ जावे हमारे अनुभव में आ जावे तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। रात के अंधेरे में रस्सी पर पैर पड़ने पर भी ऐसा भ्रम हो जाता है कि जैसे मेरा पैर सांप पर पड़ गया है तब मन बहुत भयभीत होता है, अपने जीवन के बचाने की आकांक्षा उत्पन्न होती है, अपने शरीर के प्रति मोह जागृत होता है और सारा संसार बेमानी मालूम पड़ने लगता है उन क्षणों में कि प्राण बच जाए किसी भी तरह से। लेकिन यदि जरा सी रोशनी हो जाए और उस रोशनी होने पर ये दिखाई पड़ जाए कि अरे ये सांप नहीं है ये तो रस्सी है तब भय कहां गायब हो गया, था ही नहीं, एक भ्रम था। ऐसे ही संसार में शरीर के प्रति संसार की सुख दुख के प्रति और अपने भोग विलास की सामग्री के प्रति हमारे मन में जो भ्रम है कि इन सब से मुझे सुख मिलेगा यदि वो भ्रम टूट जाए तो हम इस संसार में सुख दुख के बीच भी निराकुल होकर के निश्चिंत होकर के निर्भय होकर के अपना जीवन क्या व्यतीत नहीं कर सकते। फिर जब जिस चीज में सुख नहीं है उस चीज को पाने की आकांक्षा क्या मेरे भीतर उत्पन्न होगी? जिस शरीर की अपवित्रता और नाश नश्वरता का भान मुझे हो जावे उस शरीर से क्या मैं आशक्त होऊंगा? या कि जो शाश्वत है और हमेशा अपने विकास में सक्षम है ऐसी चेतना की तरफ मेरी दृष्टि जाएगी या कि शरीर की तरफ जाएगी? और जिससे मेरा उत्थान होता हो मैं वैसे मार्ग पर चलूंगा या कि जिससे मेरा पतन होता हो मैं वैसे मार्ग पर चलूंगा? मैं किसकी प्रशंसा करूंगा? मैं सच्चे मार्ग की प्रशंसा करूंगा, मैं बुरे मार्ग पर एक कदम भी नहीं रखूंगा? ये सारी चीजें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आती हैं यदि हमें ये बोध ये अनुभूति हो जावे, ऐसा हमारे भीतर विश्वास जागृत हो जावे संसार शरीर और भोगों के प्रति, उनकी वास्तविकता के प्रति। तो हमने पिछले दिनों यही किया है और हमने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि हाँ सचमुच धीरे धीरे निराकुलता और निश्चिंता आ रही है। पहले तो छोटी छोटी बातें भी विचलित कर देती थी, अब संसार की ये छोटी छोटी बातें मुझे मेरे मार्ग से विचलित नहीं करती, मुझे संसार की कोई आकांक्षा इतनी अधिक बाध्य नहीं करती है कि मुझे मेरे कल्याण में बाधा उत्पन्न कर सके। अब मैं लोगों के शरीर की तरफ और अपनी भी देह की तरफ कम देखता हूं, मैं अपने चेतना और आसपास लोगों के भीतर जो चेतना की विकसित अवस्था है उसकी तरफ भी देखता हूं। अब लोग मुझे भ्रमित नहीं कर सकते, मुझे सच्चा मार्ग मालूम पड़ गया है। अब चाहे जितने और रास्ते कहीं भी जाते हों मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने एक रास्ते पर सीधा, एक अकेला भी मुझे चलना पड़े तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। इतनी तैयारी तो अपन ने पिछले दिनों कर ली है, लेकिन ऐसा करने के बाद भी संभव है कि उस सच्चे रास्ते पर, उस अच्छे बनने के रास्ते पर चलते समय हमसे या कि किसी और से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वाला शक्त जनाश्रयाम वाचताम यत् प्रमार्जन्ति तद् वदन्ति उपगुहनम्। तब तब फिर मेरा क्या दायित्व है? मेरे भीतर दृष्टि की निर्मलता आने पर मेरे भीतर किस तरह की गुणवत्ता पैदा होनी चाहिए? ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने पर, ऐसी कंडीशन बनने पर, मैं सच्चे मार्ग पर चल रहा हूं और लोग भी सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बाल अशक्त जनाश्रयाम वाचतम, तब संभव है कि उनकी अज्ञानता से, उनके प्रमाद से, उनकी अपनी कमजोरी से और कोई गलती हो सकती है, कोई चूक हो सकती है, कोई दोष उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ऐसा होने पर भी मेरी दृष्टि की निर्मलता मुझे इस बात की तरफ प्रेरित करती है कि मैं दोष दर्शन ना करूं। हम सबके साथ ये मुश्किल है कि हम कितनी भी धर्म की बातें दोहरा लें, धर्म की क्रियाएं दोहरा लें, अपने को धर्मात्मा मान लें, लेकिन इसके बाद भी दोष दर्शन की प्रवृत्ति नहीं जाती, तो हम उसके कहां कमी है इस बात की तरफ देखते हैं। देखें अपन, अगर अपने परिवार में कोई व्यक्ति थोड़ा सा आगे आकर के और उपवास इत्यादि की साधना करने का प्रयास करे और शाम होते न होते उसके चेहरे पर थोड़ी म्लानता आ जावे या कि उसके मुंह से अचानक ये निकल जावे कि भूख की वेदना बहुत तीव्र है, तब शायद उसकी पीठ पर हाथ रख के ये कहने वाला कोई नहीं मिलेगा कि तुमने 12 घंटे आसानी से निकाल दिए, बस थोड़ी सी और रात शेष रही, कितना और कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बल्कि ये कहने मिल जाएंगे कहा किसने था, और करो, जब होता नहीं है तो करते क्यों? यह प्रवृत्ति हमारी दृष्टि की निर्मलता को मलिन करने वाली दृष्टि है और हमने अक्सर इस चीज को देखा है हर जगह कि कभी कोई अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ता है तो लेग पुलिंग, टांग खींच वाली नीति, वो क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों वो अधिक अच्छा बन रहा है, क्यों वो गुणवान बन रहा है, क्यों वो मेरे से आगे निकल रहा है, ये जो एक प्रवृत्ति हमारे भीतर है वो हमारी दृष्टि की निर्मलता को गड़बड़ाती है, हमारे श्रद्धान में वो दोष उत्पन्न करती है। इस पर हमें विचार करना चाहिए मोक्ष मार्ग या कि सच्चाई का मार्ग तो शुद्ध है, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य। लेकिन क्या करें, कोई अज्ञानी है, कोई कमजोर है, अभी बिल्कुल बिगिनर है, अभी शुरुआत कर रहा है, संभव है कि उससे कोई चूक हो सकती, उससे कोई भूल हो सकती, उससे कहीं कुछ गलती हो सकती है, इन्फॉर्मिटीज है, किसके भीतर नहीं है, अनादिकाल का संस्कार है। लेकिन मेरा फर्ज क्या है, मेरा फर्ज यह है कि मैं उसके दोषों को इग्नोर करूं, मैं उसके दोषों को अनदेखा करूं, मैं उसके दोषों को देखने की चेष्टा ना करूं, अगर दिख भी जाए तो उन्हें अनदेखा करूं। और इतना ही नहीं, मैं उन दोषों को कैसे दूर हो सकते हैं इस बात की चिंता करूं, इस बात के लिए प्रयत्न करूं, अपने भी और दूसरे के भी। ये दोनों जगह की बात है। हम अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं और संभव है कि हमारे भीतर बुराइयों के संस्कार की वजह से बुराइयां आ जावें और हम चूक जावें, तब अपने उन दोषों को भी देख करके परिमार्जित करना, और दूसरे में भी अगर कोई अच्छे रास्ते पर चलते समय दोष उत्पन्न हो जावे तो उसे भी दूर करने, प्रमार्जन्ती वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ती, होने वाली गलतियों भूलों को जो प्रमार्जित करता है, जो उनका संशोधन करता है, जस्ट लाइक ए डॉक्टर, एक एक डॉक्टर की तरह, एक चिकित्सक की तरह, जो उनके रोगों की जैसे वो चिकित्सा करता है। कभी किसी डॉक्टर को आपने चौराहे पर माइक लगाकर ये कहते सुना कि ये देख लो भैया जी को टीबी हो गई, इनके लक्षण तो देखो, ये देख लो इनको कैंसर हो गया, ये ऐसे रोग में ग्रसित हो गए, ऐसा कहते सुना कभी? अरे रोगी भी अगर पूछे ऐसा रोग हो जाने पर कि डॉक्टर साहब क्या हो गया मुझे, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, 8-10 दिन दवाई खाओ, और 8-10 दिन दवाई खाने के बाद जब थोड़ा सा रोग हाथ में आ जाता तब धीरे से कंधे पर हाथ रख के कहते कि भैया सावधान रहो, बड़ा खतरनाक रोग था, वो तो बच गए आप। वो दोषों को कैसे प्रमाणित कर रहा है, और हम तो अगर किसी सच्चे रास्ते पर चलने वाले की कोई भूल चूक दिखाई पड़ जाती है तो चौराहे पर खड़े होकर के असल में होता क्या है, इससे हमारे अंदर दो तीन चीजें होती हैं। हमारे बुराइयों का संस्कार, इससे हानि बहुत है। ये है तो छोटी सी प्रवृत्ति और अपने को नहीं समझ में आती, लेकिन इससे हानियां कितनी हैं। एक तो दूसरे के दोष देखने से हमारे अंदर दोष देखने की प्रवृत्ति और अधिक सुदृढ़ हो जाती, संस्कार बहुत गहरा हो जाता। दूसरी चीज, एक बार दूसरे के दोष देखना शुरू हो गए तो फिर कभी किसी में कोई गुण दिखाई नहीं पड़ेगा। और तीसरी चीज, अपने अवगुण फिर कभी नहीं दिखेंगे। दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति वाले को अपने दोष कभी दिखाई नहीं पड़ते, और मजा ये है कि अपने दोषी होने के बाद भी अपने ठीक होने का मिथ्या भ्रम हो जाता है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है, और ये प्रवृत्ति सब दूर देखने में आती है, और अपने आप को अपन सम्यक दृष्टि भी मान लेते हैं, बड़ा मजा ये है। इस बात पर अपन को बहुत गौर से विचार करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि आखिर बात क्या है। एक तरफ मैं अपनी दृष्टि की निर्मलता की बात कर रहा हूं, एक तरफ मैं सच्चे आत्म स्वरूप में श्रद्धान रखने वाला हूं, और एक तरफ जो हमें आत्मा के स्वरूप को तो कम देखता हूं, और शरीर के माध्यम से होने वाली जो छोटी मोटी बाह्य आचरण में होने वाली, प्रवृत्ति में होने वाली जो मिस्टेक हैं, जो इन्फॉर्मिटीज हैं, उनको मैं ज्यादा देखता हूं, मैं चेतना की उस निर्मल अवस्था को नहीं देखता हूं, मैं अपनी भी और दूसरे की भी, तो फिर मेरी इस दृष्टि की निर्मलता का मतलब क्या हुआ? वो तो आई ही नहीं मेरे अंदर अभी। परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य, मिथ्यात्व के साथ में नीच गोत्र का बंध होता है। कौन से परिणाम करने से? परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद गुणोच्छादनोद भावने च, सूत्र जी का सूत्र है, दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरे के अच्छे गुणों को प्रकट नहीं होने देना, और अपने गुणों को बहुत प्रकट करना, दूसरे के दोषों को प्रकट करना, अपने दोषों को छिपा लेना, दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। सद सद गुणोच्छादनोद्भावने च, सद और असद विद्यमान और अविद्यमान दोनों जो दूसरे में विद्यमान नहीं है उन दोषों का भी डिंडोरा पीटना, जो विद्यमान है उनकी तो छोड़ो। ऐसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है और नीच गोत्र हमेशा दूसरे गुण स्थान तक बनता है मिथ्यात्व के साथ। तो जरा विचार कर लें कि जब जब भी आत्म प्रशंसा और पर की निंदा का भाव आवे तो समझना कि अपनी दृष्टि की निर्मलता से विचलित होकर के आ गए हैं वहीं जहां अनादिकाल से संसार में पड़े हुए और संसार के सुख और दुख के चक्र में निरंतर पीड़ित हो रहे हैं, वहीं आके गिर गए फिर से। ये विचार हमारे मन में उस समय नहीं आ पाता है पर आना चाहिए। जब भी किसी के दोष देखने और उसकी निंदा करने, निंदा में रस बहुत आता क्योंकि अपने अच्छे होने का भ्रम पैदा हो जाता। दूसरे के दोष देखने से ये लगता कि देखो हम कितने अच्छे हैं, जी देखो इनके लक्षण देखो हम तो बहुत अच्छे हैं। नहीं अच्छे होने पर भी अच्छे होने का भ्रम पैदा हो जाता, इससे बचना चाहिए। और हम ध्यान रखें कि जब भी दूसरे की गलती देखते हैं तब पहले हम गलत हो जाते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराइयों का एक कॉम्बिनेशन है। कोई भी व्यक्ति अच्छाई अच्छाई से युक्त अगर है तो वो तो वहां बैठे हैं भगवान वेदी पर, जिनके अंदर को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर शेषैः तुम संस्कृतो निरवकाश तया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्भैः स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। एकमात्र आप हैं जिनको की दोष स्वप्न में भी पसंद नहीं करते, आपके पास आते ही नहीं वो। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप सिर्फ गुणों से युक्त हों हे भगवान, और बाकी संसारी जीव तो गुण और दोष दोनों से युक्त हैं। हमें उसमें से क्या देखना है ये हमारी अपनी अप्रोच है। ए कॉमन मैन थिंक्स अबाउट पर्सन, ए मीडियम मैन थिंक अबाउट इवेंट्स, और ए सुप्रीम बीइंग थिंक्स अबाउट आइडियाज एंड आइडियल्स। ऐसा लिखा, एक सामान्य व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति के बारे में ही सोचता है और उसके बारे में भी भला नहीं सोचता। दो लोग बैठे हो तीसरे के बारे में कुछ अच्छा सोचें ऐसा तो बहुत मुश्किल है। दो बैठेंगे तो तीसरे के बारे में तुमने सुना तो फौरन वो कहेगा तुमने आज सुना, हम तो उनको जिंदगी से जानते हैं, ऐसा कहेगा वो फौरन। दो लोग बैठ के अगर तीसरे के बारे में विचार कर रहे हैं तो समझना कि बहुत कॉमन पर्सन है, और दो लोग बैठ करके अगर किसी घटना के बारे में विचार कर रहे हैं तो सोचना थोड़े से मीडियम क्वालिटी के हैं, और अगर सिर्फ आइडियाज और आइडियल्स के बारे में विचार कर रहे हैं तो समझना कि उनका सोच उनकी दृष्टि ही निर्मल है, उनकी दृष्टि ही ऊंची है। हम अपने जीवन में झांक करके देखें कि क्या ऐसा होता है, जब भी हम विचार करते हैं तो क्या हमारे मन में आदर्श के प्रति और अपने जीवन को आदर्श बनाने का विचार आता है। कभी भी दो लोगों ने बैठ करके कभी वस्तु स्वरूप की चर्चा करी है या कि सिर्फ यहां वहां की? जरा विचार करें अपन, जो अपन कहीं भी खड़े हो जाते हैं यहीं पर मंदिर के ही प्रांगण में खड़े हो जाते हैं तो क्या कभी दूसरे से ये बोलते हैं कि जीव का स्वरूप कैसा है, क्या आपको तत्व के स्वरूप का कोई भान हुआ है या नहीं हुआ? आज तो मैंने जो है ग्रंथ में एक बहुत सुंदर सी बात पढ़ी थी, आप पसंद करें सुनना तो आइए जरा अपन खड़े होकर के और आपस में बात कर लें। नहीं, आज के भाव क्या थे और आज पेपर में क्या आया और आज अजमेर में कौन सी घटना घटी, इन चीजों में जितना हमारा इंटरेस्ट है उससे मालूम पड़ता है। और उसमें भी मजा ये है कि दोष दर्शन, जो जो गड़बड़ हुआ होगा वो दिखाई पड़ेगा, जो अच्छा है वो दिखाई नहीं पड़ता। अगर ये प्रवृत्ति हमारे अंदर है तो ना हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे और ना हमारे जीवन से कोई प्रेरणा लेकर अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। इसलिए इस दोष दर्शन की प्रवृत्ति से बचने के लिए आचार्य भगवंतों ने लिखा कि बहुत सरल है कभी किसी भी बेकसूर पर दोष लगाना, नहीं कठिन है हर दुर्बल को धमकी देना और डराना। अरे बेबस को क्या और गिराना, उठे उसे उठाओ तो मैं जानू, तन का क्या श्रृंगार सजाना, मन श्रृंगारो तो मैं जानू। ये चीज हमारे मन में आनी चाहिए। ये तो शब्दों में है, मैंने आपसे कही, मैंने कहीं पढ़ी थी, ठीक है आपको अच्छी लगी, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको अच्छी लगी। आपको अच्छी लगी तब मानी जाएगी, हम सबको अच्छी लगी तब मानी जाएगी जब हम इसको फॉलो कर पाएंगे। सुनने में कर्ण प्रिय लगना बहुत अलग बात है, लेकिन मन को भा जाना और मन में वही चीज हमारे जज्ब हो जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंस तो उसकी है। हम लोगों को इस तरह का प्रयत्न करना चाहिए। दोष दर्शन की प्रवृत्ति से हम अपने दोषों से को देखने से वंचित रह जाते हैं। क्या हुआ, एक बार ये पंडित जी थे कटनी वाले, तो वो सुनाते थे कि बोले मैं सामायिक में बैठ रहा था तो नाती वगैरह उनके ऊधम कर रहे थे, तो उनको उन्होंने कहा कि देखो अब हम भगवान का ध्यान करेंगे, सामायिक करेंगे, तुम लोग ऊधम नहीं करना यहां पर। अब बच्चे तो बच्चे हैं, उनने दादाजी के सामने हंस दिया, हाँ नहीं करेंगे नहीं करेंगे, दादाजी आप तो करो सामायिक। तो बोले मैं सामायिक में बैठ गया, लेकिन अब वो काय को मानने वाले, वो तो चक्कर लगाए उनके, और फिर उनकी आंख में से ना वो खोल करके देखें कि दादाजी क्या कर रहे हैं, ऐसे आंख बंद करके क्या कर रहे हैं। अब बच्चों को तो मजा आती है, कोई उनकी गोद में जाकर के बैठ गया, सामायिक आमायिक सब धरी, लेकिन वो नहीं उठे, सामायिक करते रहे। बाद में जब सामायिक पूरी हो गई तो बच्चों को धीरे से बुलाया, क्यों रे कौन कौन ऊधम कर रहा था। अब बच्चे होशियार बहुत होते हैं, सब समझते हैं, तो उसमें से एक कहता है उठ करके जल्दी से, दादाजी भगवान नहीं बन सकते, दादाजी भगवान नहीं बन सकते। अरे हम पूछ रहे हैं कि कौन कौन ऊधम कर रहा था सो बता नहीं रहे, और कह रहे दादाजी भगवान नहीं बन सकते। अच्छा बताओ मैं क्यों नहीं भगवान बन सकता, जब दादाजी सामायिक कर रहे थे तो कैसे मालूम पड़ा कि हम ऊधम कर रहे थे। पकड़े गए, आप अगर सामायिक कर रहे थे तो आपको कैसे मालूम कि हम ऊधम कर रहे हैं, या तो आप अपनी सामायिक करो। जब भी दूसरे के दोष देखते हैं तो अपनी कमी नहीं देख पाते हैं, दूसरे को आपने ऐसा करते देखा इसका मतलब आप तो अपने आत्म स्वरूप से पहले विचलित हो गए, आप तो स्वयं पहले गलत हो गए। भैया दूसरे को गलत कहने वाला पहले स्वयं गलत हो जाता है, और दूसरे को अच्छा कहने वाला, दूसरा अच्छा हो या ना हो, स्वयं अच्छा हो जाता। एक जगह लिखा है कि दूसरे को अच्छा तो कहो, अगर वो अच्छा नहीं भी हो तो उसे अच्छा बनने की प्रेरणा मिलेगी आप अगर उसे अच्छा कह देंगे तो, और अगर आपने दूसरे को बुरा कहा तो दूसरा बुरा नहीं भी होगा तब भी वो कहेगा कि जब चार लोग मुझे बुरा कह रहे हैं तो अब करई के देख लेंगे हम जो जो कुछ नहीं किया है आज तक गड़बड़ियां, जब कह ही रहे हैं। गलतियां हमारे जीवन में तब आती हैं जब हम व्यक्ति की अच्छाइयों का सम्मान न करके और बुराइयों का डिंडोरा पीटते हैं, और आज यही हुआ है, हम सबके जीवन में अच्छाइयों का वेटेज कम हो गया है, और दूसरे के जीवन में क्योंकि हमने अच्छाइयों को देखना बंद कर दिया है, हमें अपने आसपास अब अच्छाइयां कम दिखती हैं, बुराइयां और खराबियां ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। नहीं भैया, दोष दर्शन की प्रवृत्ति छोड़कर गुणवत्ता को, कहते जरूर हैं कि दोषवादे च मौनम सद्वृत्ता नाम गुणगण कथा, सद्वृत्तों का गुण गान करें, उनके दोष अगर दिख जाएं तो मौन रहें। तीन ही बातें लिखी हैं कि एक तो दोष देखना नहीं, अगर दिख जावे बाई दबे तो कहना नहीं, और कहने का अगर मन हो तो उसके गुरु से जाकर के धीरे से कहना, या कि उसे निकालने के लिए पुरुषार्थ करना कि कैसे इसमें से ये दोष, क्योंकि अगर इसमये न्यून अन्यान्येती धर्म स्थान गर्विताशया सोत्येती धर्मात्मीयम न धर्मो धार्मिक ही बिना, अपने धर्मात्मा का तिरस्कार करना, इसके मायने हैं अपने आत्म धर्म का ही तिरस्कार करना। इसलिए जरूरी है कि कोई अगर धर्म के रास्ते पर चल रहा है और वो उसके अंदर कोई दोष उसकी अज्ञानता से, उसकी अपनी कमजोरी से अगर कोई दोष अगर दिखाई पड़ जाता है, तो हमारा फर्ज है, हमारा सम्यक दर्शन हमें ये कहता है, हमारी दृष्टि की निर्मलता ये कहती है कि चिंतित हो जाओ इस बात के लिए कि इसमें से ये दोष कैसे निकले, और बड़े प्रेम से। दोष निकालने की प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि दोष कह देने से दोष निकल जाएगा, उसकी प्रक्रिया तो आप स्वयं, दूसरे के अंदर कमियां हैं। मुझे याद आता है जब बच्चों को छोटे छोटे, मैं अपने कॉलेज टाइम में और बैठ करके और पढ़ाया करता था। तब क्या हुआ था कि एक बच्चे के और 45-50 नंबर आए थे 100 में से, तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा था, बल्कि सारे बच्चों के सामने ये कहा कि शायद मेरी कोई गलती हो गई जिससे कि मैं इसको ठीक से इस पे ध्यान नहीं दे पाया और इसके कम नंबर आए हैं, बाकी बच्चों के तो 90 और 95 नंबर आए हैं, मेरी ही कहीं कोई कमी रह गई। उस बच्चे ने इस बात को सुनकर के इतना फील किया था, अगर मैं उसको डांटता और ये कहता कि ये देखो कितना गधा है और 50 नंबर लेके आया, तब शायद वो अगले बार या तो विद्यालय में आना बंद कर देता या कि कहता कि अब जब 50 लोगों के सामने हंसी हो गई है तो अब ठीक है, इतना ही ठीक है। लेकिन उसको ये तकलीफ हुई कि पढ़ाने वाले को मेरे कम नंबर आने से ज्यादा तकलीफ है, तब फिर अगले बार मुझे और ज्यादा लाने हैं। और अगले बार मैंने उसको 90 और 95 नंबर लाते देखा। ये क्या चीज है? हम दूसरे के दोषों को अगर ढकें और उसके भीतर की गुणवत्ता को प्रकट करने के लिए उसको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, ये अपने जीवन में भी और दूसरे के जीवन में भी, तब कहलाएगा कि हाँ भैया अपन को दृष्टि की निर्मलता और सम्यक दर्शन। इसीलिए तो सम्यक दर्शन बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है। कैसी होती होगी ऐसी दृष्टि कि किसी के दोष ही नहीं दिख रहे हैं, गुण ही गुण दिखाई पड़ रहे हैं, और अगर कहीं कोई अपने साधर्मी में कोई दोष दिख भी जाता है तो कैसी चिंता लग जाती है कि जल्दी से कैसे उसमें से दोष निकालें, उसको पता भी ना पड़े और वो दोषों से मुक्त हो जाए, मुझे किसी से कहना भी नहीं पड़े और धीरे से ऐसे निकाल दूं उसके दोषों को। ऐसी प्रवृत्ति हमारे भीतर जागृत होनी चाहिए। बच्चन ने लिखा, हर आदमी के बारे में शायद यही चीज है, कहां मनुष्य है कि जो उम्मीद छोड़कर जिया, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। कहां मनुष्य है जिसे कमी खली न प्यार की, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुरार लो। कहां मनुष्य है जिसे न भूल शूल सी गड़ी, इसलिए खड़ा रहा कि भूल तुम सुधार लो। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, पुकार के दुलार लो, दुलार के सुधार लो। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। यहां हर आदमी बहुत कमजोर है और हर आदमी से गलती होती है, लेकिन हर आदमी ये भी चाहता है कि कोई उसे प्रेम से उस गलती को इशारा करे, और इतना ही नहीं वो उसके साथ खड़े हो करके उस गलती को सुधारने में उसकी मदद करे। भैया ऐसी अगर हमारे अंदर निर्मलता आ जावे तब देखें कि हमारा अपना जीवन और हमारे आसपास का जीवन कितना उज्जवल, कितना निर्मल और कितना अच्छा बन सकता है। दूसरे पर कचरा फेंकने के लिए अपने घर में कचरा इकट्ठा करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। दूसरे के अंदर की खराबियों को देखकर अपने मन को गंदा कर लेना ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। ऐसा ही विचार अपन को करके और अपने जीवन को भी और अपने आसपास के जीवन को भी सुगंधित और अच्छा बनाने का निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसी भावना के साथ कि हम सब लोग अपने जीवन में गुणों को बढ़ाएं, दूसरे के गुणों को देखने की प्रवृत्ति विकसित करें और जहां तक बन सके अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। गग की न स्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। स समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में भवंदन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनाश करमणियां के शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरु वर प्रणाम मिथ्या तम नाश विखो चौ द्रव्य जान विखो बंद विच बान विखो सफर पहचान विखो परम प्रमाणी है कहाँ कहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही दिन वाणी जावाणी के ज्ञान के सूझ लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे
तुम